आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनविता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु काकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई किसी यात्रा पर गए हुए अनुभवों को, वहाँ की कहानियों को लिखता है, वहाँ जगह का वर्णन करता है, तो ये यात्रा की कहानी यात्रा वृत्तांत कहलाती है। तो इसमें भी लेखिका जो है वो एक यात्रा पे गई है, सिक्किम राज्य जो हमारे भारत का है, वहाँ की राजधानी है गंगटोक, वहाँ गंगटोक से होती हुई वो हिमालय की तरफ जाती हैं, उसी का वर्णन वो इसमें कर रही हैं कि कैसे खूबसूरत से नज़ारे वो रास्ते में देखती हैं, है ना। अभी तक हमने यही पढ़ा कि वो खूबसूरती का वर्णन करती हुई जा रही हैं, लेकिन अब आता है इस खूबसूरती के बीच उन्हें पहाड़ें ने दिखती हैं जो कि पत्थर काट रही हैं, क्यों, ताकि रास्ता चौड़ा हो सके, जिस रास्ते से लोग घूमने जाते हैं वो रास्ता चौड़ा हो सके। यही काम जब वो देखती हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, ये हम आज पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर 22 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 22 के सेकंड पैराग्राफ से हमें स्टार्ट करना था, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब लेखिका एक बीआरओ के कर्मचारी से पूछती हैं कि महिलाएं जो हैं क्या कर रही हैं, तो वो बताते हैं कि जिन रास्तों से आप गुजर रही हैं ये उन रास्तों को चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। क्योंकि उसने मजाक में ऐसे कहा था कि जिस रास्ते आप जा रही हैं ये उन्हीं को चौड़ा बना रही हैं, तो लेखिका ने जब कहा कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा, यानी बड़ा डरावना मुश्किल कार्य होगा ये, तो ऐसी बात सुनकर वो भी संजीदा हो गया, यानी जो व्यक्ति, जो कर्मचारी था बीआरओ का, वो भी गंभीर हो गया। तो वो कहने लगा कि हाँ, इस काम में पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी, ये बहुत ही दुसाध्य यानी बहुत ही मुश्किल काम है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। कैसे बनाते हैं पहाड़ों पर रास्ता, वो बताता है कि पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया, जो बड़े बड़े चट्टान पहाड़ जैसे होते हैं उन्हें उड़ा दिया जाता है, और फिर जो पत्थर टूटते हैं उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर छोटे छोटे एक आकार के, लगभग लगभग एक आकार के पत्थरों में बदला जाता है, और फिर उन्हें रास्तों पर बराबर बिछाया जाता है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, थोड़ी सी भी भूल गलती कहीं हो गई, तो सीधा पाताल प्रवेश, यानी सीधा कहाँ जाएंगे आप, पाताल में, जब घाटी में गिर जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। जब वो ये बातें सुन रही थी तो उनको क्या याद आया कि सिक्किम सरकार का एक जगह क्या बोर्ड लगा था कि एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे कि जो रास्तों पे आप चल रहे हैं, रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, यानी मौत को भी हरा दिया है, यानी हिम्मत का काम है। ये आप इसी पेज पे देख सकते हैं ना, नीचे की तरफ एक चित्र बना हुआ है जहाँ पे जो पहाड़ की चट्टाने डायनामाइट से उड़ा दी गई है, और फिर अब बड़े बड़े पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा और छोटे पत्थरों के आकार में किया जाएगा। ये कैमरे से लिया गया एक चित्र है जो शायद लेखिका ने ही लिया होगा। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़नों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। अब क्या कह रही हैं वो कि जब उनने ये महिलाओं को देखा, ये सारी बातें सुनी, तो उनके दिमाग में क्या याद आ गया कि एक बार वो पहले किसी यात्रा पे गई थी, कहाँ पे, पलामू और गुमला, वहां इन जगहों पे जो जंगल थे वहां पे भी उन्होंने देखा था महिलाओं को ऐसे मेहनत करते हुए, लेकिन उनका काम क्या था, वो भी कपड़े से अपने बच्चों को पीठ पे बांध लेती थी और जंगलों में घूमती थी, क्योंकि वो आदिवासी युवतियां थी तो पत्ते या जो जरूरी लकड़ियां या जो चीजें होती हैं उनके लिए वो घूमती थी। तो लेखिका कह रही है कि वो जो आदिवासी स्त्रियां थी उनके जो पैर फूले थे और यहाँ पे जो इन पहाड़ियों के हाथ में ठाटे, यानी जो छाले या गांठ से पड़ जाते हैं ना, हाथ में जो छाले पड़ जाते हैं, वो सारी एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी कैसी है, सारी मलाई यानी सारे सुख एक तरफ और सारे आंसू अभाव परेशानियां मुश्किलें सब एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। अब क्या होता है, सहयात्री यानी कि साथ में जो यात्रा कर रही थी सहेली कह सकते हैं आप, लेखिका की मणि और जितेन जो कि उनका ड्राइवर था, वो उन्हें खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं। और जब जितेन देखता है कि वो गमगीन है यानी किसी बात के दुख में है, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। वो क्या कहता है, ये तो मेरे देश की आम जनता है ना, यानी ऐसे कष्ट, ऐसे मेहनती लोग तो आप लगभग हर जगह देख लेंगी, आप यहाँ पर इतने पैसे खर्च करके आई हैं पहाड़ों की सुंदरता को देखने, तो आप उसी चीज को देखिए ना, इनको देखकर परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसे वो ड्राइवर उनसे कहता है। यह देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, यह वेस्ट एंड रिपेइंग है, वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा विश्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। अब क्या हुआ, वो क्या कहती हैं लेखिका कि देश की आम जनता नहीं है बल्कि जीवन के प्रति संतुलन है, ये बैलेंस बनाए हुए हैं कि जहां एक बहुत अमीर और सुख पूर्वक जिंदगी जीते लोग हैं तो कहीं एक ऐसे लोग भी हैं, ये वेस्ट एट रिपेइंग है, यानी ऐसी चीज जो मतलब रिपेइंग यानी वापस लौटाना, यानी ये बहुत ही कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटाती है इसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। ऐसा सोचते सोचते जीप की तरफ जा ही रहे थे कि वो श्रम सुंदरिया यानी कि मेहनत करती हुई खूबसूरत महिलाएं किसी आपस में किसी बात में हंसती हैं, और उनको हंसते हुए देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति हंस उठी है, जीवन हंस उठा है, जीवन लहरा के नाच उठा है, इतना सुंदर नजारा हो जाता है। और वो खंडर, क्योंकि वहां पत्थर टूटे हुए थे तो वो खंडर था वहां पे, अब वो खंडर न लग के ताजमहल जैसे खूबसूरत स्थान लग रहा था, क्यों, सिर्फ उनकी मुस्कुराहट की वजह से। आगे देखिए, यहाँ एक पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट शुरू। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र में ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए अब दूसरे पार्ट में क्या है कि लोग ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं यानी अब पहाड़ों पे और ऊपर जाते जा रहे हैं। तो जितेन जो उनका ड्राइवर है वो उन्हें क्या बताता है, हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट, यानी कि जो पहाड़ों पर होता है, अगर आप में से कोई गया हो तो आपको पता होगा बहुत ही घुमावदार और तीखा रास्ता होता है, तो वो जो घुमाव होते हैं इतनी जल्दी मुड़ जाते हैं कि पता ही नहीं, जैसे हेयर पिन होती है ना बालों में लगाने वाली, जो हेयर पिन एक तरफ से मुड़ के दूसरी तरफ से ऐसी घूमी हुई होती है, जुड़ा पिन आप समझ सकते हैं, जुड़े में लगाने वाली यू शेप में जो पिन होती है, उसी तरीके से इतनी जल्दी जल्दी वो मोड़ मुड़ेंगे कि उसे हेयर पिन बेंट कहते हैं। तो तभी वो क्या देखते हैं, हेयर पिन बेंट से पहले कि 7-8 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल से लौट रहे हैं और फिर उनसे लिफ्ट मांगने लगते हैं। अब जो ड्राइवर है वो बताता है कि ये बच्चे लिफ्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये 3-3.5 किलोमीटर की रोज पहाड़ी चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते हैं, इतना ही चढ़ के स्कूल जाते हैं फिर इतना ही उतर कर आते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्वीला नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है, नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्टर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। अब जो मणि है, जो उनकी सहयात्री उनके साथ में जो यात्रा कर रही है लेखिका के साथ में, वो अचानक से पूछ लेती है कि बच्चे इतना चढ़ के क्यों जाते हैं, क्या वहाँ कोई स्कूल बस नहीं है? जैसे आपके मन में भी पढ़ के सवाल आया होगा कि बच्चे पैदल क्यों जाते हैं, कोई स्कूल बस या कोई वाहन कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है? तो जितेंद्र जो है वो हंसने लगता है, कहता है मैडम ये कोई मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है, मैदान जैसी जिंदगी यहाँ आसान नहीं होती, यहाँ जिंदगी बहुत कठिन होती है, यहाँ आपको कोई भी चिकना वर्वीला यानी बड़े हुए पेट वाला, जैसे मैदान में इंसान क्योंकि इतने कष्ट भरी जिंदगी नहीं जीता है तो अक्सर क्या होता है कि उसके पेट बढ़ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, तो वही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, सारे मेहनती लोग मिलेंगे, शरीर में वो जो मेहनत वो करते हैं वो दिखेगी। कहता है कि तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, पहाड़ों के नीचे एक ही घाटी में एक ही स्कूल है, तो उसी में सबको जाना होता है, तो दूर दूर से बच्चों को जहां से भी वो आ सकते हैं सब उसमें पढ़ने जाते हैं। और सिर्फ इतना ही काम नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे स्कूल आए, स्कूल से आके घर जाके आज तो स्कूल हो आए हैं, बहुत थक गए हैं, अब हम सोएंगे, होमवर्क करेंगे, बस पूरे दिन का ये काम बहुत काम हो गया है ना, ये वाला जीवन चल रहा होती है। लेकिन पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता, वहां जीवन बहुत कठिन है ना। तो वो बताता है कि पढ़ने तो जाते हैं बच्चे, साथ में क्या करते हैं, शाम को फिर अपनी माओं के साथ मवेशी यानी जो गाय भैंस बकरी भेड़ी जो पाली होती हैं इनको चरवाते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। वो बोलता है कि मैंने भी लकड़ी के जो गट्ठर हैं वो खुद भी ढोए हैं, मैं भी उठा के ले जाता था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे खाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हम खतरों के प्रति सजग कर रही थी, सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या है देखिए, लेखिका बताती है अब रास्तों पे खतरा बढ़ रहा था आगे, क्योंकि रास्ते जो है वो और संकरे यानी और पतले होते जा रहे थे, और लेखिका बोली ऐसा लग रहा था कि रास्तों को बस इतना ही चौड़ा बनाया गया है कि कोई जीप यहाँ से निकल सके, इंच टेप से नापा गया है, बिल्कुल जीप जितना, कि थोड़ी सी भी जीप इधर उधर हुई, एक इंच भी इधर उधर हुए तो संतुलन बिगड़ गया तो आप जाएंगे घाटी में, है ना। और इसी तरह इसी वजह से वहां पे कई चेतावनियां लिखी थी जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि हमें खतरों के प्रति कैसे सजग रहना है, कैसे सावधान रहना है। जैसे एक चेतावनी लिखी थी कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरबक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे। दूसरी चेतावनी क्या लिखी थी, वी केयर मैन इटर अराउंड, यानी कि हम आपका ख्याल करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो मैन ईटर हैं यानी आदमियों को खाने वाले जानवर हैं वो अराउंड यानी आसपास ही जानवरों को खाने आसपास ही इंसानों को खाने वाले जानवर भी मिल सकते हैं। तो लेखिका क्या कहती है, हमें नरभक्षी जानवर यानी नर यानी इंसान, भक्षी यानी खाने वाले, हमें इंसानों को खाने वाले जानवर तो नहीं मिले लेकिन दूध देने वाले याक जरूर मिले। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने वाले बालों वाला याक। वो बता रही है कि वहां पे उन्हें बहुत सारे सुंदर सुंदर याक भी देखने को मिलते हैं जिन पे घने बाल होते हैं बहुत सारे, क्यों, ताकि ये जो ठंड है उससे वो बच सके। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू यानी सिक्किम में परिधान एक ड्रेस होती है, कपड़े होते हैं जो सिक्किम में पहने जाते हैं, उसे बोकू कहते हैं। तो कह रही हैं कि कुछ सिक्किमी महिलाएं वहां बोकू पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। अब क्या हुआ, सूरज ढलने लगा था यानी शाम हो रही थी, और फिर रस्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखती हैं, पहाड़ी औरतें जो गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ी के गट्ठर हैं, मतलब उनके मेहनत को यहाँ पे दिखाया गया है। और आसमान में अब क्या है, फिर से धुंध है, फिर से बादल है। उतरती संध्या में जीप अब कहाँ थी, उतरती संध्या यानी शाम ढल रही थी, और जीप जो थी वो चाय के जो बागान होते हैं ना वहां से गुजर रही थी जहां चाय के पौधे होते हैं, और वहां उन्हें दिखती हैं कुछ महिलाएं जो कि चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। क्या पहने हुए, बोकू। बोकू होता है सिक्किम की एक ड्रेस। लेखिका कहती है कि इस दृश्य ने फिर से उसे खींचा कि उनका ध्यान क्यों खींचा इस तरफ, कि एक तो इतनी मेहनत कर रही थी और वो मेहनत से उनका चेहरा गुलाबी हो गया था, सुंदर दिखने लगा था, और हरे रंग के बागान में एक स्त्री उन्होंने देखी जो कि बहुत ही चटक यानी एकदम गहरे ब्राइट रेड कलर का उसने बोकू पहन रखा था लाल रंग का, और इतनी हरियाली में ये लाल रंग के कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष बन रहा हो, और मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी, यानी लेखिका को अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि वो चीख पड़ी है। इतना अधिक सौंदर्य यानी इतनी ज्यादा खूबसूरती एक साथ मेरे लिए असहाय थी, यानी इतनी सारी खूबसूरती इतनी सारी सुंदरता एक साथ वो सहन नहीं कर पा रही थी। यूमथोंग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। अब क्या होता है, वो बताती है क्योंकि वो यूमथोंग की तरफ जा रही है, हमने पढ़ी लिया था, तो वहां पहुंचने के लिए रात हो गई थी तो उन्हें कहीं पे रुकना था, तो अब इस समय वो लायुंग में थे तो यहीं पे उन्हें रुकना था। और लायुंग को कैसे उन्होंने देखी, कैसे उसको उन्होंने बताया है, कैसे उसका विवरण किया है, गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती, यानी इतने ऊंचे पहाड़ जो गगन को छू रहे हों, आकाश को छू रहे हों, उनके तल में उनकी घाटी में हल्के से सांस लेती छोटी सी एक बस्ती लोगों की जिसका नाम लायुंग। सारी जो दौड़ धूप से दूर जिंदगी है वो यहाँ पे निश्चिंत सो रही थी अब, यानी यहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही शांत था। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। अब कहाँ रुके, वो लायुंग में ही रुके, एक घर में एक जगह उन्होंने ली जो कहा था तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी का बना हुआ, पहाड़ों पर अक्सर लकड़ी के घर बने होते हैं, तो यही लकड़ी पर घिरा हुआ एक घर था जहां वो बैठे रुके, और वहां पहुंच के अपना सामान रख के हाथ मुंह धोके लेखिका जल्दी से बाहर आती है। क्यों, तिस्ता नदी के किनारे बैठने, वो प्रकृति के फिर से दृश्य के नजारों के मजे लेते हुए जो वहां पत्थर बिखरे हुए थे उन्हीं पर वो बैठती हैं। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था, यानी सामने उन्हें एक झरना दिखाई देता है जो वो पत्थरों पर बैठी देख रही हैं, जो कि नीचे नदी में मिलता जा रहा था। अब मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वातावरण में अद्भुत शांति थी, मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझनाहट सी। आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्ना सा बोधसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। क्या बता रही है वो कि बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चल रही है जिसकी वजह से पेड़ पौधे हिल रहे हैं और बादलों की परत इतनी गहरी है, धुंध इतनी छाई हुई है कि चांद ढक गया है, चांद नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, वो अब वापस क्योंकि शाम हो गई अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। पूरा वातावरण, पूरा माहौल जो है वो शांत है। एक अद्भुत शांति वहां पर है। कैसी शांति है? लेकिन हल्की सी एक आवाज है, सुकून भरी, जैसे मंदिर की कहीं घंटी बज रही हो या घुंघरू बज रहे हो ऐसी। और ये सब देखकर आंखें अनायास, यानी अचानक ही उनकी जो आंखें हैं वो भर आई। लेखिका अचानक ही उनकी आंखें जो गीली हो जाती है, रोने का मन करता है और उनके अंदर उन्हें क्या लगता है, एक छोटा सा बोधिसत्व यानी छोटा सा ज्ञान उनमें आ रहा है। कि क्या ज्ञान आ रहा है? कि सुख शांति सुकून जीवन वहीं पर है जहां पे अखंडित संपूर्णता, यानी वो पूर्णता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल में है, प्रकृति के प्राकृतिक स्वरूप में है। लेकिन उन्हें रोना किस बात पे आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है कि जो हमारी पीढ़ी है उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये एक अक्षम्य अपराध है, यानी ऐसा अपराध, ऐसी सजा, ऐसी गलती है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कोई माफी नहीं है, है ना। हम अपनी क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, प्रकृति का जो नाश कर रहे हैं ना हम, ये चीज उन्हें बुरी लगती है अब कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके लिए तो माफी भी नहीं मिल सकती, माफी भी बहुत छोटी चीज है। और इतना सोच सोच के लेखिका को अब रोना आ रहा है। और लेखिका कहती है अब हिमालय सिर्फ कविता नहीं है, यानी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी खूबसूरती के बारे में सोचो, दर्शन बन गया, यानी ऐसी चीज बन गया कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 25। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तमसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। अब वो क्या कह रही है, अंधेरा और गहरा, उससे पहले ही डगमगाती यानी लड़खड़ाती हुई और शिलाओं पे पत्थरों पे जैसे तैसी होती हुई वो नदी की धार तक पहुंच जाती, नदी के पास, और जो उसका पानी बह रहा है स्वच्छ सा, वो उसे अपनी अंजलि में यानी अपने जैसे दोनों हाथों की हथेलियों में भर लेती हैं। और फिर उनके अंदर एक अतीत धड़कने लगता, यानी पुरानी चीजें उन्हें याद आने लगती हैं और उन्हें अचानक से याद आता है कि हमारे यहाँ क्या परंपरा, क्या रीति रही है कि जब भी हम जल को हाथ में लेते हैं तो हम कुछ संकल्प करते हैं और उस संकल्प को हमें पूरा करना होता है। तो लेखिका कह रही है कि मैंने भी सोचा जब मैंने जल हाथ में लिया है तो मैं भी संकल्प करूं, लेकिन क्या संकल्प करूं ये समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में नहीं थी कि कुछ संकल्प कर पाती, इतना मजबूत मुझे महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने सिर्फ एक प्रार्थना करी, एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, क्योंकि अंदर से कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए बस इतनी प्रार्थना निकली कि जो अंदर का हलाहल, हलाहल क्या होता है, विष यानी जहर, ठीक है, जो अंदर का जहर है, सारी तामसिकता यानी बुरी इच्छाएं हैं, बुरी आदतें, ये सारी इसमें बह जाएं, सारी की सारी बुरी आदतें ये जो नदी की धार है सुंदरता में बह जाएं। और इसी के साथ अब रात गहराने लगी, यानी रात और ज्यादा होने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, यानी रात हो गई थी पूरी तरह से, सब जगह अंधेरा छा गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी वह मोहक रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आया था इतना आनंद। अब क्या हुआ, जैसे लकड़ी के खिलौने होते हैं ना, उसी तरह का वो गेस्ट हाउस था लकड़ी का। उसी में जब जो जितेन उनका ड्राइवर था वो अपने साथियों के साथ वहां नाचने लगता है, मस्ती करने लगता है, और वो माहौल इतना इतनी मोहक यानी इसे मन मोह लेने वाली रात बन जाती है, और हर तरफ हर किसी को आनंद होने लगता है। फिर वो कहती हैं कि संक्रमण सा फैल जाता है। संक्रमण यानी कि जैसे एक से दूसरे में जो फैल जाए मिलके छूके, ऐसे संक्रमण से वो मस्ती एक दूसरे में फैलती है। और फिर जो सारे सैलानी, जो सारे वहां पे लोग घूमने गए हुए थे, वो सारे नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं गोल गोल घूम के। इसके साथ ही वो बताती हैं जो मणि थी, जो उनकी सहेली थी लेखिका की, 50 साल की हो गई लेकिन इतना जानदार यानी इतना अच्छा नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया, इतना अच्छा डांस उन्होंने किया कि सभी लोग अवाक रहे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वाह क्या डांस किया है वो इस उम्र में। तो लेखिका सोच रही है इतना आनंद भरा था, ये जो खुशी थी, ये जो उत्साह उसके अंदर भरा था, ये कहां से आया। इसी तरह से रात व्यतीत होती है। अब सुबह का दृश्य देखिए, लायोंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। आप क्या कह रही हैं, लायोंग की सुबह यानी लायोंग की सुबह का वर्णन कर रही हैं, जो कि बहुत ही शांत है, सुरम्य है, और जो नदी है वो एकदम शांत होके बह रही है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन यानी कि वहां पे लोग कैसे जीविका कमाते हैं, कैसे अपना खर्चा चलाते हैं जीवन यापन के लिए, पहाड़ी आलू बेच के, धान की खेती करके और दारू का व्यापार करके, ये सारी चीजें वहां बिकती हैं जिससे लोगों की कमाई होती है। सुबह लेखिका अकेले निकल जाती हैं और क्या सोचती हैं कि मुझे कहीं बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जो लोग मैदान में रहते हैं ना, हमें अक्सर यही उत्साह होता है पहाड़ों पर घूमने जाएं तो बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वहां उन्हें बर्फ नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि वो अप्रैल में गई हैं और अप्रैल कि जो शुरुआती महीने यानी शुरुआती दिन जो होते हैं उसमें बर्फ वहां नहीं मिलती। वो कहती हैं कि हम सी लेवल से यानी जो समुद्री स्तर है, सी लेवल यानी समुद्र का स्तर, उससे 14,000 फीट ऊंचाई पर हैं, फिर भी बर्फ नहीं देखने को मिलती। लेकिन मैं बर्फ के लिए बेचैन थी, क्यों, क्योंकि जो हम पहाड़ के लोग हैं उन्हें बर्फ देखना बहुत पसंद होता है, और जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं वो उनके लिए किसी जन्नत यानी किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तीय बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। वो क्या कह रही है, वहां के सिक्किमी नवयुवक यानी सिक्किम में रहने वाला एक जो नौजवान है, कम उम्र का व्यक्ति, उन्हें बताता है कि प्रदूषण आजकल इतना होने लगा है कि स्नोफॉल कम होती है, यानी इतनी प्रदूषण, इतनी गर्मी, इतना गंदगी हम लोगों ने फैला दी है कि अब बर्फ कम गिरती है। लेकिन अगर वो कहता है अगर आप कटाव एक जगह है वहां जाती हैं तो आपको हर हालत में बर्फ मिलेगी। कटाव को हम क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, कटाव बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं था यानी चर्चा में नहीं था, खबर में नहीं आया था, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, लोग वहां ज्यादा घूमने नहीं जाते थे, इस वजह से वहां पे वहां का जो प्रदूषण है वो अभी खत्म नहीं हुआ था, और वहां का प्रदूषण खत्म नहीं हुआ था इस वजह से वो अभी भी अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, यानी अभी भी उतना ही सुंदर था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया था। ठीक है, मीठी झिड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया। अब क्या हुआ, वो आदमी था वो लेखिका से बतिया रहा था, उसकी घरवाली यानी जो उसकी पत्नी थी वो अपने लकड़ी के छोटे से घर में से उन्हें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो हम लोग जब बाहर से कोई जाते हैं यात्री, उनको बहुत ही उत्साह से एक नएपन के साथ देख रहे होते हैं। तभी गाय आती है, थैले में रखा हुआ महुआ खा जाती है, जिसको मीठी चिड़की देखे यानी मीठी तरीके से डांट के वो भगा देता है। कह रहे तुमने क्यों खा लिया, जाओ यहाँ से, ऐसे करके वो गाय को भगा देता है। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अब क्या होता है देखिए, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना, यानी उन्हें एक उम्मीद है कि हाँ बर्फ मिलेगी, आवेश है कि मिलना है, और एक अजीब से उत्तेजना है कि बर्फ देखनी ही देखनी है। इस उसके साथ वो कटाव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता और खतरनाक और ऊंचा और पतला होता जा रहा था। उसके साथ ही वहां धुंध थी, बारिश थी, बादलों ने ढक रखा था और जितेन लगभग अब अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। पहाड़ी लोगों को गाड़ी चलाने का अलग ही अनुभव होता है, वो अंदाजे से चलाते हैं कि रास्ते में कैसे चलानी है, इतनी धूप, बादल और बारिश में भी। ठीक है, तो अब हम आगे की जो कहानी है वो हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।